मोबाइल वाणी के साझा मंच पर हमारे साथ जुड़े हैं किसान आंदोलन के राष्ट्रीय स्तर के नेता अविनाश भाई काकड़े। अविनाश भाई काकड़े नमस्कार।
नमस्कार।
हाँ, आप हमें ये बताएं कि श्रम कानून, नया श्रम कानून जिसके बारे में बातें हो रही है इतनी, ये है क्या?
देखो, आपको अगर ये करना है, बेकारी दूर करना है, तो 8 घंटे का जो श्रम का कानून था उसको 6 घंटे पर लाना था। इन्होंने 12 घंटे कर दिया। मतलब जिसको रोजगार मिला है उसको 12 घंटे तक आप रगड़ लोगे तो उसकी वर्क क्वालिटी भी खराब होगी, और ह्यूमन जो एम्पावरमेंट है या ह्यूमन के जो राइट्स है उसको तोड़ने का काम ये श्रम कानून कर रहे हैं। हर जगह मैन पावर कितना यूज कर लोगे, किस तरीके से यूज करोगे? एक तरफ आप बोल रहे हैं बेकारी बढ़ रही है, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि लोगों को काम नहीं मिल रहा है। तो आपने तीन दो शिफ्ट कर दिए, 3 शिफ्ट होती थी तो 2 शिफ्ट कर दिए, उसकी जगह 4 करते तो 4 लोग काम पाते ना।
बिल्कुल
मगर ये सरकार पूरी की पूरी ये उद्योगपतियों के हित में काम करती है, ना लेबर के हित में काम करती है, ना गरीबों के हित में काम करती है।
क्या देश को श्रम कानूनों में परिवर्तन की कोई जरूरत थी?
किसी कानून में परिवर्तन की जरूरत होती है, मगर ऐसे कंडीशन में जिस वक्त पूरा देश लॉकडाउन में चल रहा था, इस वक्त कितने कानून बदल दिए? एजुकेशन का कानून बदल दिए, लेबर का कानून बदल दिए, किसानों के कानून बदल दिए, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, सारे जंगल बेच दिए। ये सारे कानून बदलने की जरूरत थी क्या? मगर इनको विरोध नहीं चाहिए ना किसी का। अगर आप रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करते हो, जिर पूरे स्टेशन बेचते हो, अगर रेलवे पूरे फ्लोज में चालू होती तो क्या ये कर सकते थे? चक्का जाम हो जाता था, लेबर सारे चक्का जाम कर देते थे। मगर इनको पता है अभी ये पेंडेमिक में ये तो इन्होंने इमरजेंसी लागू कर दी है, और इसमें कोई भी निर्णय लेने में ये पीछे नहीं हट रहे हैं, और ऐसे ऐसे निर्णय ले रहे हैं कि जिसमें देश की सारी संपदा बिक जाएगी, देश का सारा लेबर बिक जाएगा। और इनकी इच्छा क्या है? तो इनकी इच्छा एक ही है कि इस देश के उद्योगपतियों का भला हो जाए, बाकी जनता जाए कहीं तेल लेने।
क्या पहले के जो श्रम कानून थे वो मजदूरों के हित में नहीं थे?
श्रम कानून मजदूरों के हित में रहते, जैसे 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 फेज बढ़ते रहता है, आगे पीछे होते रहता है फेज, तो कुछ डिमांडे नई आती है, कुछ पुराने डिमांड छोड़ना पड़ता है। हमको अगर ग्लोबल इसमें वर्ल्ड में कॉम्पीट करना है तो कुछ श्रम कानूनों में सुधार चाहिए था, ये उद्योगपति बोल रहे थे। मगर ये नहीं सुधार चाहिए था कि 8 घंटे काम करने वाला आदमी 12 घंटे काम कर ले, उसके सारे सोशल जो इम्पैक्ट है, सोशल, उसका एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा, उसका ने बीमार हो जाए तो क्या होगा, उसकी छुट्टियों का क्या होगा, इसके सारे के सारे नल एंड वाइट कर दिए, पूरे वॉश कर दिए। कोई भी अगर लेबर, आप ये बताइए कि लेबर 3 महीने तक कुछ भी नहीं कर सकेगा, मतलब उसकी नौकरी से निकाल दिया, 3 महीने कुछ नहीं कर सकेगा, लेबर की यूनियन भी नहीं कर सकेगी, फिर उसके बाद में उसको रेफर किया जाएगा उनके, यानी वो ये होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या उनके पास में, वो उसकी 1 साल सुनवाई करेंगे, फिर 1 साल के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट अगर विरोध में आया तो उसके बाद में उसकी ने वो 3 महीने का फिर उसको समय मिलेगा मास्टर को। तो कौन लेबर 1.5-2 साल अपने बिना पेमेंट के उससे लड़ने के काबिल हो जाएगा? सरकार ने ऐसे ऐसे अड़ंगे डाल दिए कि तुम 1.5 साल तो कोई फरियाद भी नहीं कर सकते, ना उसको कोई डिमांड कर सकते, ना उसको कोई कॉम्पेंसेशन मांग सकते हो। ये कानून कोई यानी किसी के हित में है? किसी वर्कर के हित में है? किसी लेबर के हित में है? देश के हित में भी तो भी है क्या?
क्या कोई ऐसे बदलाव हैं इस नए श्रम कानून में जिसके बारे में श्रमिक और कंपनियों को गंभीरता के साथ सोचने की जरूरत है?
श्रमिकों को भी सोचने की जरूरत है और कंपनियों को भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि कंपनियों में जितना शोषण इस तरीके से अगर करना चाहोगे तो पहली बात तो आप 12 घंटे अगर काम करवाते हो तो क्वालिटी ऑफ वर्क में खराबी हो जाएगी, वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी में 8 घंटे बहुत हो गया। हमारी जो इंडियन कंडीशन है उसमें ह्यूमन बॉडी 8 घंटे में एग्जॉस्ट हो जाती है। अब ये 12 घंटे कहाँ से लाओगे आप? इतनी हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है और ठंडी का भी मौसम बहुत विचित्र होता है, तो वो गर्मी के मौसम में 8 घंटे में तो एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर कैसे काम करवाओगे उससे? तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन भी खराब होगा, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन भी खराब होगा, लेबर भी खराब हो जाएगा। तो ये उसका आफ्टरऑल इफेक्ट तो प्रोडक्शन पे पड़ेगा ना, उस पर कारखाने पे पड़ेगा।
क्या इस नए श्रम कानून के जरिए मजदूरों को यूनियनों से अलग रखने की योजना है या विरोध
देखो,
क्या?
अगर कोई भी यूनियन अगर 1.5-2 साल उसके लिए कोई फरियाद नहीं कर सके तो लेबर यूनियन में क्यों जाएगा? यूनियन में तो इसीलिए जाता है ना कि तुरंत उसको न्याय मिलता है, कोर्ट में तुरंत न्याय नहीं मिलता, इसलिए तो लेबर एसोसिएशन बनी है ना कि नहीं
बिल्कुल,
बनी।
बिल्कुल बिल्कुल।
तो अगर उसकी लेबर एसोसिएशन में सुनवाई डेढ़ डेढ़ 200 साल नहीं होगी, या लेबर एसोसिएशन उसके लिए डेढ़ 2 साल कुछ नहीं कर सकेगी ये नए अड़ंगों की वजह से, तो फिर लेबर यूनियनों की जरूरत क्या रह जाएगी?
तो यदि अगर यूनियन कमजोर होती है तो मजदूरों और नियोक्ताओं के बीच की स्थितियां कैसी होंगी?
भैया इनको तो नहीं चाहिए ना, जनता के समझदार लोग इनको नहीं चाहिए। कोई भी जागरूक हो जाए, बच्चा जागरूक हो जाए, छात्र जागरूक हो जाए, कोई प्रोफेशनलिस्ट जागरूक हो जाए, लेबर जागरूक हो जाए, किसान जागरूक हो जाए, इसको इनको किसी को जागृति नहीं देना है। इनको तो सबको एनेस्थीसिया पिला देना है, धर्म का, जाति का, देशभक्ति का, ये सब एनेस्थीसिया देते हैं, ये सलाइन दे देते हैं, आपको एनेस्थीसिया में पिला के समाप्त कर देते हैं। आप बताइए कि 60-70 ग्राम ने गांजा मिलता है किसी फिल्म स्टार के यहाँ, तो उसको अरेस्ट कर लेते हैं, और 300 किलो ये मिलता है पुलवामा में आरडीएक्स, तो कहाँ से आता है उसका अभी तक पता नहीं चलता, 300 किलो आरडीएक्स का। 60 ग्राम गांजा का पता चल जाता है आपको, और आरडीएक्स का 300 किलो का नहीं करता है। और आपकी वो सीबीआई जो तोता थी, कांग्रेस के जमाने में भी तोता थी और आपके जमाने में तोते का क्या हो गया उसका? उसके तो पर काट दिए आपने पूरे।
बिल्कुल।
कितने राज्यों में सीबीआई को बैन किया गया, आप समझ सकते हो कि केंद्रीय एजेंसी को राज्य बैन कर रहे, मतलब ये देश रहेगा क्या? ये देश में चलेगा क्या कुछ?
किसान विरोधी नीतियां जो प्रदर्शित हो रही है, जो आपको लग रहा है और किसानों को भी लग रहा है, इसके संबंध में कुछ बताइए।
देखो किसान, किसान के जो 3 कानून लाए, उसमें सबसे पहला कानून है, इन्होंने बाजार समिति को हटा दिया
जी।
ये लालीपाप बता रहे हैं कि आपको बाजार समिति में 6% टैक्स देना पड़ता था, प्राइवेट बाजार समिति में देना नहीं पड़ेगा। मगर उसमें एमएसपी का क्या होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का क्या होगा? वैसा भी 6-8 माने इनकी जो परचेसिंग है, 6-8% ही माल को एमएसपी मिलता था, अब उसको भी नहीं देना है। तो इन्होंने क्या किया कि मार्केट ओपन कर दिया, आप कहीं भी ले जाके बेच सकते हो, बता दिया। अब मुझे बताओ कि कहीं भी ले जाके बेच सकते हो ना, तो पैच पे बैन कैसे लगा देते हो? उससे कुछ आता नहीं क्या, इनपुट आते नहीं क्या? क्या फॉरेन मनी नहीं आता है क्या? पैच अगर एक्सपोर्ट होता है तो फॉरेन मनी आता है ना, डॉलर ही आता है ना। तो एक तरफ आप ग्लोबलाइज की बात करते हो, दूसरे तरफ आप हमारे एक्सपोर्ट पे बैन लगा देते हो। जैसे ही किसानों को दाम मिलने की बात आती है, सरकार इंटरफेरेंस करती क्यों है? नहीं करना चाहिए ना, जब आपने फ्री कर दिया तो हमारे को फ्री करो, नहीं करते। तो उन्होंने एमएसपी का वो घाटा दिया, मतलब कोई सुरक्षा नहीं रहेगी, और सुरक्षा नहीं रहेगी इसका मतलब है। और मोदी जी उसमें बताते हैं, ट्विटर ट्वीट करके बताते हैं, सोशल मीडिया पे बताते कि नहीं नहीं हम एमएसपी देंगे। जब ये देंगे तो फिर कानून में क्यों नहीं डाला? तुम्हारे ट्विटर और इस पे फेसबुक पे लेके कोई एमएसपी देने वाला है क्या? आपने बोला क्यों नहीं कि जो प्राइवेट इसमें खरीदेंगे मंडी में, अगर एमएसपी से नीचे खरीदते हैं तो उसको जेल होगी, क्यों नहीं बोला आपने? और आपका एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र तोमर बोलता है कि जब ये व्यापारी और किसान के बीच का मामला है तो इसमें सरकार एमएसपी कहाँ से आ गया? मतलब आज ही आपकी नीयत साफ हो गई। तो मोदी जितना झूठ बोल सकते वो झूठ बोलते हैं, मोदी नहीं देने का है तो नहीं देते, ये बदमाशी है सारी की सारी। दूसरी बात इन्होंने उस किसान कानून में की है कि स्टॉक करने का कोई ये नहीं रखे कि कितना भी स्टॉक कर सकते हैं, वो ठीक है किसान स्टॉक कर रहा है, मगर जिसने स्टॉक किया उसने कंपनी ने अगर किसान का माल जब आता है उस वक्त अगर उसने मार्केट में डाल दिया वो सारा माल, और किसान के दाम अगर जबरदस्ती गिरा दिया, तो उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, उसके ऊपर कोई सरकार बात नहीं कर रही है। तीसरी बात उसमें है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हो, आपके जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, फसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, मान्य है, बहुत अच्छी बात है। मगर आप बताइए कि आपने कभी इंश्योरेंस निकाला है? तो इंश्योरेंस निकालते होंगे तो एक फॉर्म आता है 25-30 पेज का, उससे सिग्नेचर लेते हैं। जब क्लेम देने की बात आती तो आपको समझ में नहीं आता किस पे सिग्नेचर लिया था, और वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं। कंपनियां अगर ऐसे फॉर्म 25-50 मैंने पेज के फॉर्मों पे अगर किसानों के सिग्नेचर ले ले और फिर परचेसिंग करते वक्त बोले कि नहीं तेरा क्वालिटी अच्छी नहीं है, तेरी बने हुई है, इसमें कचरा है, इसमें धुन है, इसमें फलाना है, मैंने जो दिया था वो क्वालिटी का आया नहीं, और उसने परचेज नहीं किया तो क्या होगा, इसका कुछ नहीं रहेगा क्लॉज में, वो कानून में इन्होंने कुछ डाला नहीं है। इन्होंने क्या डाला कि तुम एग्रीमेंट कर लो डायरेक्ट कंपनियों से, एग्रीमेंट किसान कर लेगा और दोनों में डिस्प्यूट हो जाए तो किसके पास जाएगा, एसडीओ के पास जाएगा, कलेक्टर के पास जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी के पास जाएगा। अगर अगर मैंने गवर्नर को भी बोला था हमारे महाराष्ट्र के कि भैया अगर यही काम लोग कर सकते, यही जुडिशियरी का काम करते, एसडीओ और कलेक्टर और वो सेक्रेटरी, तो फिर जुडिशियरी बनाए क्यों हमारे देश में, बंद कर दो ना जुडिशियरी, जुडिशियरी का तो कोई काम नहीं है। तो आपने किसानों को जुडिशियरी का रास्ता भी बंद कर दिया, ये कौन सा देश चल रहा है, हम किस तरीके से देश चलाना चाहते हैं कि अगर कंपनी और उसका डिस्प्यूट हो गया तो उसकी जो ये होगा उसकी जो यानी सुलझाने के लिए जो यंत्रणा होगी वो भी प्रशासकीय यंत्रणा होगी, और प्रशासकीय यंत्रणा में कलेक्टर को मिलने के लिए किसानों को कितने साल लग जाएंगे, मिलेगा कलेक्टर, मिलेगा एसडीओ, वो तो कंपनी के पेरोल पे चले जैसी बात करता है। आज हमारा प्रशासन सारा कंपनियों को और बड़े सेठ साहूकारों को बिक गया है, और हम हमारी सरकारें ये बोल रही है, मोदी सरकार विशेष तौर से ये बोल रही है कि आपको न्याय भी अब प्रशासनिक अधिकारी देंगे, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। तो ये सारी की सारी बदमाशियां है, और ये बदमाशियां उन्होंने ऐसा पेंडेमिक सिचुएशन में ला के खड़ा कर दिए। तो फिर भी पंजाब का किसान और हरियाणा का किसान इकट्ठा होके आ रहा है, कोई भी आंदोलनकारी दिल्ली में आके अपना धरना प्रदर्शन करता है एक्सेप्ट किसान, किसानों को ना तो इसमें दिल्ली के क्या बॉर्डर बंद कर दिए क्या सारी किसानों के लिए, जब भी किसान आंदोलन करता है सारी फौज खड़ी हो जाती है, सारे बॉर्डर सील किए जाता है। चंद्रशेखर रावण का जो आरक्षण आंदोलन होता है उसके लिए नहीं बॉर्डर सील होती कभी, कोई किसी का ये मंदिर खोलो वाला आंदोलन होता है उसके लिए बॉर्डर सील नहीं होती, तो इन लोगों के लिए बॉर्डर सील नहीं होती, और किसान जब भी कोई डिमांड करता है तो उसके लिए बॉर्डर सील हो जाती है, कहाँ का तरीका है?
जय देश के जय जवान जय किसान का नारे का क्या हो गया भैया?
अरे मर जवान मर किसान हो गया, वो तो पहले से ही दे रहा मोदी।
हमारा भारत कृषि प्रधान देश माना जाता है,
ये बेकार की बात है, हमारा देश कृषि प्रधान है तो कृषि प्रधान है, तो जैसे अंग्रेजों को रेल की जरूरत थी तो रेल का सेपरेट बजट आता था, किसान का भी सेपरेट बजट आना चाहिए था, नहीं आया। किसान अन्नदाता है, तो मैं तो किसानों को बोलता हूँ कि तुम अगर अन्नदाता हो तो फिर अपने उपज के दाम क्यों मांगते हो, क्योंकि अगर कन्यादान कर दिया तो कन्या का मोल नहीं मांगा जाता ना, आपने अगर अन्नदान किया तो अन्न का मोल नहीं मांगा जाता है। तो आप दाता नहीं हो, पहले तो उद्योजक बनो, उत्पादक बनो तुम। ये सर ये सारे जो है ना चने के पेड़ पर चढ़ाने वाले जो काम किए जाते हैं और फिर उसके ऊपर उनको शोषण किया जाता है, उनको कुछ नहीं दिया जाता, यही बात है। सत्य बात यह है कि गत 15 सालों में यूरिया के दाम और ये 6 सालों में विशेषकर यूरिया के दाम, फर्टिलाइजर के दाम, पेस्टिसाइड के दाम, सीड के दाम, ये 15-15, 20-20 गुना बढ़ गए
जी।
और फसल के दाम जितने थे 6,000 रुपए क्विंटल बिकता था जो दाम हमारा मैंने सोयाबीन, वो अभी इस वक्त 3,000 रुपए 3,500 रुपए बिक रहा है। हमारा जो चावल बिकता था 40 रुपए किलो, वो अभी 20 रुपए को कोई लेने को तैयार नहीं है, और बाकी लागत इनपुट सारे मूल्य बढ़ गए, इतने तेजी से बढ़ा दिए। तो इसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे मोदी जी, ये तो हमको ये बोलेंगे गांव में आके कि आपका उत्पादन जो है दुगना कर देंगे, गांव में आके बोलेंगे, और शहर में आके वो अपने राजधानी में लिखेंगे कि हमने तेल के दाम नहीं बढ़ने दिए, चावल के नहीं बढ़ने दिए, दाल के नहीं बढ़ने दिए, इसके दाम बढ़ने नहीं दिए। तो ये तो दोनों तरफ झूठ बोलते हैं, शहर में अलग बोलते हैं, वहां अलग बोलते हैं, गांव में। तो ये न्याय देने वाली सरकार नहीं है, क्योंकि इनके कथनी और करनी में फर्क है। आरएसएस की ये पूरी चाल है कि इनके कभी एक सूत्रता नहीं रहती है, इनके पेट में एक होता है और मुंह में दूसरी बात होती है।
अविनाश काकड़े साहब, देश भर के मजदूरों और किसानों के लिए आप अपना कोई संदेश छोड़ना चाहेंगे?
मैं तो इतना ही संदेश छोड़ना चाहता हूँ कि कोई भी लड़ाई अगर लड़नी होगी तो आपको पहले मुद्दे को समझना पड़ेगा। दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी हमला भी जो हुआ था वो प्रबोधन के द्वारा हुआ था, समझा बुझा के ही उनको फ्लाइट टकराए थे, उनके कनपट्टी पे बंदूक रख के नहीं किया था वो आक्रमण या हल्ला, ना उनके परिवार को किडनैप करके करवाया गया था, उनका प्रबोधन किया गया था। दुर्भाग्य है कि किसानों का मजदूरों का प्रबोधन बंद हो गया है, उनका यूज किया जाता है सरगिनती के लिए, चलो हमला बोल देते हैं, चलो ये कर देते हैं, चलो वो कर देते हैं। नहीं, हम समझदार बने, हम हमारे माल का दाम समझे, वैल्यू समझे, मूल्य भी समझे, और उसकी मार्केटिंग अपने हाथ में ले, तभी हमारा कुछ भला हो सकता है, अन्यथा कुछ भला नहीं होगा।
नमस्कार, आदाब।
नमस्कार, आदाब।